समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। और डेडलाइन में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मनोज, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। एंड यस, टुडे विद मी इज मनोज एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स, मच मोर। एंड ऑफ कोर्स सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो हज़ भी दस्तूर निकलेंगे देश की परिक्रमा पे एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव। सो वेल, ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वील गिव यू ऑल ऑफ दिस। Let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is rapidly making its mark in artificial intelligence, says world is praising our progress in the sector.
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में उल्लेखनीय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक दिन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की कुछ प्रेरक महिलाओं को सौंपने की घोषणा की।
Prime Minister calls for a crusade against obesity, urges people to reduce edible oil consumption by 10%.
श्री मोदी ने चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 सहित सफल मिशनों के लिए इसरो की सराहना की।
In Telangana, Indian Army called in to rescue 8 stranded workers from collapsed tunnel in Nagarkurnool.
होंडुरास में आए भीषण तूफान सारा के बाद भारत ने 26 टन मानवीय सहायता भेजी।
And now it's time for Dateline India. Today we are going to talk about World Peace and Understanding Day and PM's Mann Ki Baat.
Shanti Sangharsh Ki Anupasthiti Nahi Hai. Ye Shanti Poorn Tarikon Se Sangharsh Ko Sambhalne Ki Kshamata Hai.
Yes, that's a very famous quote by Ronald Reagan. And even Einstein said, Manoj, that peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Very powerful words, Manoj, because हाल ही में हम लोग देखते हैं कि लोग जंगे लड़ते हैं इस pretext पे कि हम वहाँ पे शांति की स्थापना करना चाहते हैं, which is such a big paradox in itself. Observed annually on 23rd February, World Peace and Understanding Day highlights the importance of dialogue and mutual respect in fostering global harmony.
रोटरी इंटरनेशनल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ ये दिन सहयोग की शक्ति की याद दिलाता है और सहानुभूति, संचार और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है।
That's right. And if we talk about its history, well, World Peace and Understanding Day also marks the anniversary of Rotary International's foundation. On 23rd of February in 1905, Illinois-based attorney Paul P. Harris convened a meeting with three friends in a Chicago office.
20वीं सदी की शुरुआत में स्थापित रोटरी इंटरनेशनल ने शांति को आगे बढ़ाने, मानवीय प्रयासों का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सभा ने 1910 में पहले रोटरी क्लब की नींव रखी।
And it's interesting to know that the name Rotary was inspired by the group's initial practice of rotating meeting locations across cities like Seattle, San Francisco, Oakland and Los Angeles.
इस क्लब का मुख्य दृष्टिकोण एक पेशेवर नेटवर्क बनाना था जो राजनीतिक और धार्मिक बाधाओं से परे हो। जैसे जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुआ, इसका नाम विकसित हुआ। पहले रोटरी क्लबों का अंतर्राष्ट्रीय संघ और बाद में 1922 में रोटरी इंटरनेशनल। आज रोटरी इंटरनेशनल की 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों को 46,000 क्लबों में 1.4 मिलियन से अधिक सदस्यों के साथ वैश्विक भागीदारी है।
That's right, Manoj. In fact, almost even if we talk about our own country, most of the important cities, they have a Rotary Club. Mm-hmm. And it's important to realize that the larger the number, the more in number, that is a cause for unity and rather than a cause for dividing us. So yes, more unites us than divides us. People everywhere have similar dreams for peace and prosperity. We also face common challenges that are not bound by borders, such as cyber crimes, climate change and trafficking.
एक व्यक्ति के रूप में स्थानीय और राष्ट्रीय संवादों में भाग लेने का प्रयास करें, जहां लोग असहमत होने पर भी विभिन्न दृष्टिकोण साझा कर सकें, और ऐसे लोगों या संगठनों का समर्थन करें जो संवाद, समझ और मेल मिलाप को बढ़ावा देते हैं.
Very important, especially if we talk in the context of today's times, because aajkal jo hai har koi itna apne view ko leke rigid ho jata hai that we start trolling other people for having a different opinion, which is not good. We may have different opinion, we may not accept it, but we should definitely respect and be respectful in our language. That is very important. Jo mere khayal se haal hi mein jitna social media uruj pe gaya, to logon ko lagta hai ki hum ek faceless entity ban gaye hain, to hamari marzi जो आएगा हम उसको बोल देंगे, विच इज वेरी गुड बिकॉज इट नॉट ओनली हार्म्स द अदर पर्सन्स पीस बट आल्सो योर पीस.
सीमा होती है एक,
एब्सोल्युटली.
और इसके अलावा ये दिन लोगों को मतभेदों और संघर्षों को दूर करने के साधन के रूप में समझ, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान करता है. शांति महज एक सपना नहीं है, ये एक ऐसा विकल्प है जिसे हम हर दिन चुनते हैं. आइए अधिक शांतिपूर्ण विश्व के लिए समझ, दयालुता और सहयोग को चुने.
That's right. He is wishing for a world where understanding replaces judgment and peace prevails over conflict. Wishing all our listeners a happy World Peace and Understanding Day. And Manoj, the next topic, as I had mentioned initially, was today was Man Ki Baat.
जी हाँ, जी
हाँ. तो उसी पे क्यों ना चर्चा की जाए.
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए. कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस बात का उल्लेख किया कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान मोटापे का विषय उन्होंने उठाया था.
अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है. हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं.
Yes, indeed. Obesity is a big, big challenge that all of us, most of the people in, you can say, cities are struggling with. Yeah. And our Prime Minister also stressed that in order to become a fit and healthy nation, the problem of obesity has to be dealt with. And as per the WHO, obesity is a chronic complex disease defined by excessive fat deposits that can impair health.
मोटापे के विभिन्न कारण हैं, जैसे भोजन के अधिक सेवन से शरीर में आवश्यकता से अधिक कैलोरी बढ़ जाती है और वजन बढ़ने और मोटापे का कारण बन सकता है. शारीरिक गतिविधि की कमी से जली हुई कैलोरी की संख्या कम हो सकती है, जिससे वजन बढ़ता है. आनुवांशिक कारक शरीर के वजन और चयापचय को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कुछ व्यक्तियों में मोटापे का खतरा बढ़ जाता है.
That's right. Obesity can lead to increased risk of type 2 diabetes and heart diseases as well. It can affect bone health and reproduction. It increases the risk of certain cancers as well. Obesity influences the quality of living, such as sleeping or moving around.
अधिक वजन और मोटापा, ऊर्जा सेवन अर्थात आहार और ऊर्जा व्यय अर्थात शारीरिक गतिविधि के असंतुलन के कारण होता है. निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मोटापे की दर में वृद्धि एक ऐसी समस्या का तेजी से वैश्वीकरण कर रही है जो कभी केवल उच्च आय वाले देशों से जुड़ी थी.
That's right, and Mr. Modi cited a study which found that one in every eight people today is obese, and cases of obesity have doubled in the past years. He termed it worrisome that the problem of obesity has increased fourfold among children as well.
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ लोग अधिक वजन वाले थे. श्री मोदी ने इन आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अधिक वजन या मोटापा कई तरह की समस्याओं और बीमारियों को जन्म देता है. प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी लाने का आह्वान किया. उन्होंने श्रोताओं को हर महीने 10% कम तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी।
That's right, and the Prime Minister also stressed that excessive use of oil in food can cause diseases like heart diseases, diabetes, and hypertension. He further stated that by making small changes in food habits, people can be fit and disease-free. The Prime Minister said he will challenge 10 people to reduce oil in their food by 10%. He added that he will also urge them to pass on the same challenge to 10 other people, and he expressed confidence that this will help in fighting obesity.
श्री मोदी ने मोटापे के विषय पर ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, एथलीट निकहत जरीन और प्रतिष्ठित डॉक्टर देवी शेट्टी के विशेष संदेश भी साझा किए। नीरज चोपड़ा ने साझा किया कि एक समय उनका वजन भी अधिक था और जब उन्होंने प्रशिक्षण और स्वस्थ भोजन करना शुरू किया तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को आउटडोर खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें।
जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी मेरा भी काफी मोटापा था और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया तो काफी हेल्थ में मेरे सुधार आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि इन चीजों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।
निकहत जरीन ने कहा कि मोटापा एक राष्ट्रीय चिंता है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ आहार और दैनिक शारीरिक गतिविधि लोगों को फिट रहने में मदद करती है। उन्होंने श्रोताओं को स्वस्थ रहने के लिए कम तेल का सेवन करने की सलाह दी।
मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीजों को मैं कम इस्तेमाल करूँ।
And here's closing this very important and interesting topic of Dateline India by a quote: "It's not just about losing the weight; it's about losing the lifestyle and mindset that got you there."
और जिम रोहन कहते हैं, अपने शरीर की देखभाल करें, ये आपके रहने के लिए एकमात्र स्थान है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। मराठी भाषा को पिछले दिनों ही शास्त्रीय भाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। हिंदी और संस्कृत की तरह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली मराठी भाषा का इतिहास 2300 वर्ष पुराना माना जाता है। भाषा के विकास में सहायक होता है भाषाविदों का आपस में मिलना और अपने साहित्य का आदान प्रदान करना। इसी सिलसिले में मराठी साहित्यकारों का एक सम्मेलन आज दिल्ली में समापन होने जा रहा है। साहित्यकार और पाठकों की इस परंपरा को 2027 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।
मराठी साहित्यकारों के इस मेले में छत्रपति संभाजीनगर और मराठवाड़ा संभाग के साथ साथ समूचे महाराष्ट्र से कई साहित्यकार सम्मिलित हुए। ऐसा लग रहा था कि मानो देश का दिल कहलाए जाने वाली दिल्ली के दिल में एक महाराष्ट्र सा बस गया हो। छत्रपति संभाजीनगर आकाशवाणी के वृत्त विभाग की पुरानी सहकर्मी वृषाली देशपांडे भी इस सम्मेलन की एक संगोष्ठी में सहभागी हुई। इस सम्मेलन के बारे में उन्होंने अधिक जानकारी दी।
संयोग की बात यह है कि ये सम्मेलन उसी जगह हो रहा है जहां पहले बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र से आकर अपनी छावनी डाली थी। आज उसे तालकटोरा स्टेडियम कहा जाता है। इससे पहले 1954 में दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज 70 साल बाद फिर उसी जगह इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ तथा महाराष्ट्र के लोक साहित्य की विद्वान, अभ्यासक एवं शोधकर्ता डॉ. तारा भवाळकर इस सम्मेलन की अध्यक्ष हैं। अपने उद्घाटन के भाषण में प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा की वैभवशाली परंपरा तथा साहित्यकारों का गौरवपूर्ण उल्लेख किया। भाषाएं संस्कृति को प्रवाहित करती हैं, अतः हमें भाषाओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, इस पर उन्होंने जोर दिया। इस सम्मेलन की संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं में मराठी साहित्यकारों ने मराठी के उद्गम से लेकर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मराठी भाषा का तालमेल कैसा हो, इस विषय पर चर्चा की। साथ ही भविष्य में मराठी भाषा के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं तथा उन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है, इस विषय पर भी विचार विमर्श किया गया। कवि सम्मेलन, गजल सम्मेलन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी इस सम्मेलन में प्रस्तुति हुई।
मराठी भाषा को केवल मातृभाषा नहीं बल्कि माय मराठी अर्थात माँ कहा जाता है। ये अनूठा संयोग ही है कि इस बार दिल्ली में आयोजित यह मराठी साहित्य सम्मेलन राष्ट्रीय मातृभाषा दिन पर सम्पन्न हुआ। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से हर्षवर्धन दीक्षित।
And now we go to neighboring Haryana, where the 38th Surajkund International Crafts Mela is all set to culminate today. Let's hear more from our correspondent.
Organized by Surajkund Mela Authority and Haryana Tourism in collaboration with Union Ministries of Tourism, Textiles, Culture and External Affairs, the fair attracted over a million Indian and international visitors. Madhya Pradesh and Odisha were the partner states this year. Approximately 600 people attended the fair from 42 different nations. The crafts fair featured more than 1,000 stalls offering a diverse range of handicrafts, textiles and cultural artifacts. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जारी है। 3 दिवसीय इस मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत पर केंद्रित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मेले में किसानों को कृषि की नई तकनीक की जानकारी के साथ साथ उन्नत किस्मों के बीज और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है।
मेले का मुख्य आकर्षण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित की गई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन है। प्रदर्शनियों में IRI, ICR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यमियों, स्टार्टअप और सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों की नवीन तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मेले में आए प्रदर्शक उत्कर्ष ने अपने उपकरण के बारे में जानकारी दी।
हमारे डिवाइस का नाम पशुतम है और हमारी कंपनी का नाम AI प्रॉप है। ये डिवाइस फार्म में से एनिमल्स भगाने का काम करती है। जो हमारे कैटल्स रहते हैं ये हमारे फार्म में घुस करके फसल को बर्बाद करती है। हम अल्ट्रासोनिक स्पीकर यूज करते हैं जो कि उनके कानों में आवाज भेजते हैं जो चुभती है, और हम इसमें AI मॉडल यूज करते हैं जो ये डिटेक्ट कर सकता है कि जब भी एनिमल आता है तभी वो चीज डिटेक्ट होती है। और ये पूरा एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है। इसमें सोलर पैनल भी आता है, बैटरी भी आती है और ये चीजें खुद पे पावर होती है, 2 दिन का बैटरी बैकअप रहता है।
एक अन्य प्रदर्शक राजीव रंजन ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के बारे में बताया।
मैं डॉक्टर राजीव रंजन है, ये हमारा क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन है। तो इसमें हम बताएंगे कि क्रॉप ग्रोथ एक साथ बड़े एरिया में कैसे ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का रिक्वायरमेंट कहाँ पे कितना है, वाटर स्ट्रेस, इवन आप क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स है, लीफ एरिया इंडेक्स, बायोमास, इसको हम पता कर सकते हैं।
कृषि मेले में देश भर के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कृषकों के नवाचारों को महत्व देता है और व्यवहारिक कृषि प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को विकसित व प्रसारित करने वाले प्रतिभावान किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल पूसा कृषि विज्ञान मेले में सम्मानित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब समय हो चला है जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डिफेंस न्यूज कैप्सूल का, जिसमें आप आज सुनेंगे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस सिक्योरिटी कोर के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर से ब्रॉडकास्टिंग अधिकारी आनंद सौरभ द्वारा की गई खास बातचीत के प्रमुख अंश।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से तवांग तक डिफेंस के सारे एस्टेब्लिशमेंट्स, इंस्टॉलेशन ऐसे चाक चौबंद की परिंदा भी पर न मार पाए। और इस अभेद्य सुरक्षा को मालूम है कौन इंश्योर करता है? डिफेंस सिक्योरिटी कोर। इसके जाबाज जवान तपते मरुस्थल से लेकर खून को जमा देने वाले बर्फीले क्षेत्रों सहित सभी दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा का ऐसा मानक तय करते हैं जिसकी धाक पूरी दुनिया में है और जो दुश्मन के सभी नापाक इरादों को अपनी निष्ठा और कुशलता से परास्त कर देते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कोर 25 फरवरी को अपनी 78th रेजिंग डे मना रहा है और इस बेहद खास मौके पर हमने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DSC के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश। सर आपको डीएससी रेजिंग डे की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स।
थैंक यू। जैसे आपको पता है डीएससी तो देश का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। इनका टास्क इतना मुश्किल होता है, अलग अलग वेदर में, जिधर बर्फ भी गिर रही है, जिधर बहुत सारी गर्मी है, पूरे देश में ये अपनी ड्यूटी बहुत खूबी के साथ निभाते हैं।
किस प्रकार अब तक की जो जर्नी रही है डीएससी की और क्या क्या मेजर अकम्पलिशमेंट्स इन्होंने हासिल किए?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि डीएससी है इसीलिए हम सुरक्षित हैं। ये पूरे देश को भरोसा है कि जितनी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की सिक्योरिटी है ये डीएससी के हाथ में दी गई है। और डीएससी की सबसे बड़ी तीन खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी है बहादुरी, दूसरी खूबी है ईमानदारी, और तीसरी खूबी है देश के तरफ पूरी निष्ठा। और जो डीएससी के जवान आते हैं ये एक्चुअली ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, तो ये बहुत मेच्योर होते हैं। तो जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, जो भी ये टास्क करते हैं, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ करते हैं और बिल्कुल सब्र के साथ करते हैं। दूसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करने को तैयार है और अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए पूरे टाइम परिश्रम करते रहते हैं ताकि देश हमेशा सुरक्षित रहे।
बिल्कुल सर, और जैसे आपने जिक्र किया कि काफी मुश्किल टेरेंस में ये काम करते हैं, और सर जो वेरियस सीक्रेट थ्रेट्स हैं उस परिदृश्य में किस प्रकार आप ये इंश्योर करते हैं कि जो डीएससी के जवान जो कि ग्राउंड में हैं उन्हें सही प्रशिक्षण मिले और वो इन सभी चुनौतियों का सामना डटके कर सकें?
सबसे पहली चीज, जब डीएससी में कोई जवान आता है वो कुछ दिन एक रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग करता है डीएससी सेंटर कन्नूर में, उस समय उसको सिखाया जाता है कि जो अभी डिफेंस इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी जो होती है वो किस तरीके से की जाती है और क्या क्या थ्रेट्स आ रही हैं। जैसे आप जानते हैं आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की ड्राइवर है, नई नई थ्रेट्स आ रही हैं, असिमेट्रिक थ्रेट्स आ रही हैं, उसको काउंटर कैसे करना, वो चीजें इनको सिखाई जाती है। और नया नया इक्विपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट जो आ रहा है इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, वो उसको अपनाते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सीखते हैं। और जब जाते हैं एरिया ऑफ ड्यूटी में, उस एरिया के क्या खासूसियत है उसके बारे में भी समझते हैं। और रेगुलरली पीरियोडिकली कार्डर्स चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है, इनके जो सीनियर्स हैं इनको सिखाते हैं ये एक्शन लेना चाहिए। कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, उस गलतियों को भी सुधारते हैं। इस तरीके से वो अपने आप को पूरे टाइम इक्विप करते हैं कि वो किसी भी तरीके के चैलेंजेस को मिटिगेट कर पाए।
सर यहाँ पे ये भी पूछना मौजूद आता है कि जो भी जवान रिटायर करते हैं उनमें क्या आप वर्च्यूज, क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं डीएससी में शामिल करने के लिए?
सबसे पहले जब उनका रिकॉर्ड हम चेक करते हैं उनका जो डिसिप्लिन हो वो अव्वल दर्जे का, हाईली डिसिप्लिन्ड फोर्स है। उनकी क्वालिफिकेशंस भी देखते हैं कि किस क्वालिफिकेशन पर है। उनका फिजिकल फिटनेस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जैसे हमने बात की अलग अलग टेरेन में इनको ड्यूटी करनी पड़ती है और मुश्किल हालातों में ड्यूटी करनी पड़ती है। और चौथी चीज है उनका ओवरऑल सर्विस प्रोफाइल क्या रहा है, उसको सब मद्देनजर रखते हुए हम उनको डीएससी में सिलेक्ट करें।
सर रेजिंग एक मौका होता है जब आप पीछे मुड़के देखें, और क्या क्या उपलब्धियां रही सर हाल फिलहाल में?
अगर इस रेजिंग डे के मौके पर हम पिछले वर्ष पर अगर विचार करें, सबसे बड़ा जो डीएससी की कॉन्ट्रीब्यूशन रही है वो है वायनाड। जब ये वायनाड की लैंडस्लाइड आई थी, डिफेंस सिक्योरिटी कोर का जो सेंटर है कन्नूर ने एक टास्क फोर्स भेजी वायनाड में, और पहले 24 घंटे में इनने 1200 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया, और वो जो लोकल थे उनको डीएससी पर बहुत ज्यादा भरोसा महसूस हुआ। इस काम के लिए जो इनने अव्वल दर्जे का काम दर्शाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट एप्रिसिएशन के साथ सराहना की।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरभ।
And now time for sports news. In the ICC Men's Champions Trophy, Pakistan were 135-2 in 30.3 overs a short while ago against India in a high-stakes Group A clash at the Dubai International Stadium. Earlier, Pakistan won the toss and elected to bat first. And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
We remember social reformer Gadge Maharaj, who was born on the 23rd of February 1876 in Amravati district, Maharashtra. A public teacher, he wandered to different villages wearing his food pan upturned on his head and carrying his trademark broom. When he entered a village, he would instantly start cleaning the gutters and roads of the village. From the money that villagers used to give him, he built educational institutions, dharamshalas, hospitals and animal shelters.
Gadge Baba was highly influenced by Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. He donated the building of his hostel at Pandharpur to the People's Education Society, founded by Dr. Ambedkar. He used to cite the example of Ambedkar while urging the people to get educated, and said that education is not the monopoly of any class or caste. Baba Sahib also used to meet him frequently and had described him as the greatest servant of the people after Jyotirao Phule. We salute the great social reformer.
We also remember freedom fighters Ismail Khan and Abdul Ghani, who were martyred on the 23rd of February 1915 during the Singapore Uprising. They were soldiers in the 5th Light Infantry Regiment of the British Indian Army at Singapore. On the 15th of February 1915, their regiment was getting ready to embark on a voyage to Hong Kong from Singapore. From there, they were to be sent against their will to Europe to take part in the action against Germany during the First World War.
Ismail Khan, who was influenced by the Ghadar movement, fired at an ammunition lorry from the quarter guard near Alexandra Barracks. Abdul Ghani and other Indian soldiers also joined him, killing many British officials and European civilians. Following a violent clash, the soldiers, who mostly belonged to the regions of Punjab and Haryana, were captured. They were charged with having broken oath as soldiers of the Crown and sentenced to be shot dead. 23 Indian soldiers were placed against the stakes under the open sky and shot dead on the 23rd of February 1915. We salute the great martyrs.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस।
Yes, the first on our list is a very, very fine actress of yesteryears. In fact, we should not even call her an actress of yesteryears because she still remains a great icon of the Hindi film industry, particularly noted for her beauty and unconventional screen persona. Yes, we are talking about Madhubala. The country's highest paid star in the 1950s, she appeared in over 70 films ranging from slapstick comedies to historical dramas in a 2-decade-long career.
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना
अच्छा जी मैं हारी चलो जाओ ना
देखी सबकी यारी मेरा दिल।
फिल्म हावड़ा ब्रिज में मधुबाला ने क्लब डांसर की भूमिका अदा कर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके साथ ही वर्ष 1958 में ही प्रदर्शित फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने अपने कॉमिक अभिनय से दर्शकों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए।
हिंदी फिल्मों के प्रतिभाशाली अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और संपादक विजय आनंद की आज पुण्यतिथि है। विजय आनंद का जन्म 22 जनवरी 1934 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। विजय आनंद ने काला बाजार, तेरे घर के सामने, गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने और कोरा कागज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया। इनमें से कई फिल्में देव आनंद के करियर की शानदार फिल्में हैं।
आग में फेंक दो मैं चलूंगा नहीं, तलवार से वार करूं मैं कटूंगा नहीं, तुम अहंकार हो तुमको मरना होगा, मैं आत्मा हूं अमर हूं, मौत ख्याल है जैसे जिंदगी ख्याल है, न सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया, न इंसान न भगवान, सिर्फ मैं सिर्फ मैं।
कोई भी तेरी
We are also wishing a happy birthday to Bhagyashree, another beautiful actress. And kai baar kehte hai na Manoj ki agar koi ek hi kitab likh de aur usse famous ho jaye to Bhagyashree ki ek hi film thi, but aaj tak wo usse jaani jati hain. Let's hear this beautiful song from Maine Pyar Kiya. There's a technical glitch. We cannot hear the song, but we are also wishing Ayub Khan a happy birthday on his birthday today. Aur bahut hi khoobsurat gana hai Salami film ka. Let's listen to that.
चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार
नमस्कार।